वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोभवं गयिं पत्ते पोच्छामि समय पावड मिनवु सुदकेवली फणिदम्।
बहि अतति इति बहिरात्मा, जो बाहर की ओर प्रवर्तमान हो जाता उसका नाम बहिरात्मा। बाहर की ओर हम कैसे जाते हैं? पांच इंद्रियों के विषय मूलक जाते हैं अथवा मन प्रणाली के माध्यम से जाते हैं, इसका नाम भी बहिरात्मा। अतति व्यापनोति परिणमति संचेति इति वा इति बहिरात्मा आत्मा। तो बहि परिणमति संचेति इति वा इति बहिरात्मा आत्मा। तो बहि बाहर की ओर चला जाता। एक तो शरीर को आपा मानना बहिरात्मा, ये बहुत स्थूल है, किंतु बहिरात्मा की सही परिणति यह है कि बोलना भी बहिरात्मा में आ जाता है। नियम सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा कि जप विमुख को अंतरप्पा, जप मत्तो बहिरप्पा। जल्प मात्र बहिरात्मा है और जल्प से मुक्त जो है अंतरात्मा। और छोड़ाले के साथ इसकी यदि मान लो तुलना करे तो कहीं भी तालमेल नहीं है इसकी। यहां तो बोलने का नाम बहिरात्मा और किसी भी प्रकार से नहीं बोलने का नाम अंतरात्मा। आप 5 मिनट जाकर के कहीं बैठ जाइए, फिर भी आपकी शब्द प्रणाली कितनी चलती रहती है। कोई भी सोच विचार है तो आप किसी न किसी पदार्थ के नाम के माध्यम से उसके बारे में सोचते रहते हैं। आत्मा कहे तो आत मां, ये आना अनिवार्य है। अथवा आत्मा का लक्षण क्या है, ऐसा मन में आपने सोचा, आत्मा का लक्षण क्या, उपयोग लक्षणम और क्या, तो अब उपयोग लक्षणम ये आए बिना रह नहीं सकता। जो कोई भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से आप लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, वह प्रशिक्षण आपका अक्षरात्मक होने के कारण उसके बिना आपका दिमाग चल ही नहीं सकता। दिमाग आपका वहीं पर चला जाता है जो प्रशिक्षित शब्द के माध्यम से है। अब 5 मिनट के लिए आप सोच लीजिए, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आपके दिमाग में आ जाए किंतु उसका नाम आपको ज्ञात न हो। या तो क्रिया का नाम आएगा, या तो गुण का नाम आएगा, या तो द्रव्य का नाम आएगा, या तो स्थान का नाम आएगा, या तो रूप का नाम आएगा, या तो रस का नाम आएगा, या तो गंध का नाम आएगा, या तो शब्द का नाम आएगा। ये 5 इंद्रियों के विषय, इन 27 की संख्या के अलावा आपके पास कोई भी नहीं आता। संयोग ये भंग भले करके चले जाओ, लेकिन है तो उसमें भी इन्हीं का संयोग सारा का सारा। अक्षरों के माध्यम से जैसे शब्द के निर्माण होते हैं, उसी प्रकार क्रिया, गुण और द्रव्य और इन सब के जो है नामोल्लेख, नाम निक्षेप, उसी के माध्यम से हमारा चिंतन विचार सब कुछ चलता रहता है। और जो जितना पढ़ा लिखा होता है उसका इसी प्रकार के विस्तार बहुत दूर तक चला जाता है, उसको हम ज्ञानी विशेष रूप से कहते हैं। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वह ज्ञानी नहीं ठहर पाता, क्योंकि वह जल्प मुख को नहीं हो पाता है। कई इसी में आगे जाकर के पुण्य पाप अधिकार इत्यादि में लिखा कि वह व्यक्ति जब तक इन द्वादशांग इत्यादि में भी लगा रहेगा, तब तक वह शुद्ध आत्म तत्व का आधार नहीं ले पाएगा। इन्हीं शब्दों के माध्यम से उसकी इस ढंग से बहिर्वृत्ति होती है। रत्नत्रय उसके पास विद्यमान है। पहले कहा है द्रव्य श्रुति केवली हो करके भी वह स्वरूप का संवेदन नहीं कर सकता, और जो स्वरूप का संवेदन करता है वह भाव श्रुत केवली तो हो सकता है, लेकिन द्रव्य श्रुत केवली उस समय नहीं होगा। द्रव्य का जब प्रयोग करता है तो वह बाहर की ओर ही चला गया, तीन लोक संबंधी सारी चर्चाएं वह करता है, लेकिन स्वरूप का संवेदन उस काल में वह नहीं कर सकता। इसलिए उनको रत्नत्र युक्त होते हुए भी आचार्य कहते हैं वह प्रवृत्ति कर रहा है, उस प्रवृत्ति में सभी आ जाएंगे। कषाय कर रहा है क्या? कषाय तो नहीं कर रहा, लेकिन वह दिमाग के ऊपर जोर तो डाल रहा है। कभी कभी आप लोगों को गुस्सा आता है जो आप सोचते हैं, और दिमाग में जिसके बारे में सोचना चाहते हैं वो यदि दिमाग में नहीं आता है, और उसमें कोई भी निमित्त और पड़ जाए बाहर से, तो उसके ऊपर आप टूट पड़ जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आप भीतर होते तो हमारे डिस्टर्ब कोई बाधा ही नहीं, और आप बाहर है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। यदि भीतर आप रहते हैं तो डिस्टर्ब वाली बात ही नहीं होती, लेकिन अब चूंकि वहां पर मन नहीं लग पा रहा है और इस निमित्त से बाहर उखड़ जाता है, तो वो जो उखड़ गए के सामने आ गया नो कर्म, उसी के ऊपर हम कहें तुम तो बाधा डाल रहे हो। तो हमने कहा बाधा डाली, आपका उपयोग इस ओर आया इसलिए बाधक हो गया है। तो व्यवस्था जो है अवस्था के अनुसार होती है। मान लो व्यवस्था की बात कही तो 9:30 बजे घंटी लग जाती है, जो उठना चाहे तो व्यवस्था है। जिन्होंने पहले से 24 घंटा पूर्व में संकल्प ले रखा है उनके लिए काय की व्यवस्था, वो तो घंटी बज भी जाए तो भी उनके कान वो शोर है ही नहीं। कौन सी व्यवस्था बताओ आप? अवस्था के अनुसार व्यवस्था होती है। तो बहिरात्मा जो होता है वस्तुतः उसका उपयोग उखड़ जाता है, जब उपयोग उखड़ करके बाहर आ जाता है तो बाहर आएगा तो इन्हीं प्रमादों में और इन्हीं कषायों में, इन्हीं इंद्रियों के व्यापार में इत्यादि में लग जाता है। तो जल्प मात्र को बहिरात्मा कहा और जप विमुख को अंतरात्मा कहा। धौला में जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है 12वें गुणस्थान के प्रथम पाए में भी जल्प अंतर जल्प के रूप में चलता रहता। अब सोचो विचार करो, इसलिए 12वें गुणस्थान के बाद जो ऊपर और जो अंतिम पाए में वह जाता उसके लिए वह जल्प छूट जाता है। द्रव्य संग्रह में एक स्थान पर एकत्व की बात कर रहे हैं, यथा क्या चारित्र की बात कही जा रही है, वहां पर यह कहा कि द्रव्य श्रुत से वह भाव श्रुत में लीन हो जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य श्रुत जो है एक प्रकार से आश्रव अक्षरात्मक होने के कारण वितर्क श्रुतम, वितर्क जो चलता रहता है वो श्रुत है, और वितर्क जो है नय के ऊपर आधारित रहता, ऊहापोह रूप से वह चलता रहता है, वितर्क चलता रहता, तर्क वितर्क ऊहापोह चलता रहता है। यह बिना अक्षर और बिना श्रुत के संबंध संभव नहीं है। यद्यपि उसको भी श्रुत से रहित नहीं कहा, वितर्क से रहित नहीं कहा, सवितर्क ही कहा, लेकिन सवितर्क होकर के भी वह सवितर्क दो प्रकार के हैं, एक भाव श्रुतात्मक और एक द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत को छोड़ दिया, भाव श्रुत में इस प्रकार की कोई वितर्कता नहीं रहती लेकिन श्रुत रहता। इस प्रकार शांति बनी रहती। तो इससे हम ये समझना चाह रहे हैं कि पुस्तक जो है वह बहिरात्मा माना जाता, वह अज्ञानी होता। अज्ञानी सन किम करते, फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? कोहादिशु वट्टदे जीव यथा ज्ञानम अहम्, जैसा मैं ज्ञान हूँ ऐसे अभिदिन वर्तती, तथा क्रोधादि आश्रव रहित निर्मल आत्मानुभूति लक्षण निज शुद्धात्म स्वरूप स्वभावात् पृथक भूतेषु क्रोधादिषु क्रोधोहम इति अभिदिन वर्तते परिणमते या संचेतेते। तो क्रोधादि आश्रव से रहित निर्मल जो अपनी आत्मानुभूति लक्षण अपने शुद्ध स्वभाव है, उससे पृथक भूत क्रोधादिक में मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, अथवा रति का संवेदन अरति का संवेदन करने वाला हूँ, और भी अनेक प्रकार के भाव प्रणाली चलती हैं, उनमें वह संवेदित होता हुआ चला जाता है। इनकी इसी का नाम यह क्रोधादिशु प्रवृत्ति, ऐसा यहाँ पर तात्कालिक कहा। अथ क्रोधादिशु वट्टन्तस्य तस्य उत्तम क्षमादि स्वरूप परमात्म विलक्षणेषु क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य जीवस्य। उत्तम क्षमादि जो स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, उससे विलक्षण भूत क्रोधादिक में वह प्रवर्तमान हो जाता है। उस जीव के किम फलम भवति, उसको क्या मिलता है? कम्मस संचयो होति, परमात्म प्रच्छादक कर्मणः संचयः आश्रवः आगमनं भवति। शुद्धात्म तत्व को प्रच्छादन करने वाला, ढकने वाला जो कर्म है, उसका संचय यानी आश्रव हो जाता है। जीवस्य एवं बंधो भणिजो खलो सब्बदर्शी है, तैल रक्षिते धूलि समागम वत आश्रवे सति ततो मलानि तैल संबंधीन मलबंधवत प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश लक्षण स्वशुद्धात्म अवाप्ति स्वरूप मोक्ष विलक्षण बंधु भवति। ऐसी स्थिति में कर्म का संचय में आश्रय हुआ, तो तेल से मान लो कोई लिप गया, उसके ऊपर धूल आकर के बैठेगी। आप लोगों की दीवार के ऊपर यदि मान लो तेल लिप जाए, तो हवा के कारण धूल उड़ उड़ करके उसमें चिपक जाते हैं। यदि नहीं है तेल, तो वह दीवार से टकरा करके चले जाते हैं। स्निग्धता चिकनाहट नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो आत्मा में क्रोधादि रूप जो चिकनाहट है, स्निग्ध रूप सत्वात बंध, पर्व के समय पर हमने कहा था चिकनाहट और रूखापन इन दोनों के कारण बंध होता है। तो आत्मा में क्या चिकनाहट है? तो राग द्वेष इत्यादि हैं। रूखापन क्या है? द्वेष आदि हैं, मान भी, भय भी, शोक भी आदि आदि, ये अरति जुगुप्सा, ये सारे के सारे द्वेष के अंतर्गत आ जाते हैं। रति है, हास्य है, और तीनों वेद हैं, ये सारे सारे राग की पर्यायों में आ जाते हैं। इस प्रकार राग और द्वेष जो यह सारा का सारा मोह का परिणाम, जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चिकनाहट से और रूखेपन से बचना कितना कठिन होता है। दो के साथ रहें तो भी कठिन, और अकेले भी रहें तो भी मन वहीं वहीं पर चला जाता है, तो उससे बचना बहुत कठिन है। इतना ही है कि मन भले ही चला जाए, मन की परिणति को देखते हुए चला जा सकता है, लेकिन उसमें हर्ष और विषाद यदि हम बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं, तो हम बच सकते हैं। आज इतना ही किया जा सकता, और चतुर्थ काल में भी इतना ही किया जाता था। ये ध्यान रखना, कोई भी तीर्थंकर भी हो तो बचते हैं तो कैसे बचते हैं? बस इतना ही बचने का वहां पर प्रयास चलता है। वह रेणु तो आकर के, कण तो आकर के कर्मों के योग के माध्यम से तो टकराएंगे हैं, और तात्कालिक जो कुछ भी कषाय है संजलन इत्यादि को इसके माध्यम से कुछ अनुभव पड़ेगा भी, उसमें स्थिति भी पड़ेगी, लेकिन उस भूमिका में वह क्षम्य मानी जाती है। इसी को बंद करने के लिए वह बार बार प्रयास किया जाता है। बार बार प्रयास करते करते ही उसके अनुभव को क्षीण करते करते अपने उपयोग को उससे बचाने का पुरुषार्थ चलता रहता है। नहीं, नहीं आने के उपरांत भी और क्रोध ही मान ही इत्यादि के नहीं, और भी उनकी परिणति क्या होती है छठे गुण स्थान में, क्या होती नहीं है तो सप्तम में और छठे में क्या परिणति हुई? समान परिणति हुई? समान नहीं हुए तो फिर अपने आप ही आएगा संवेदन। वो ठीक करेगा नहीं, हमारे दृष्टि में नहीं हो रहा। अपने पास 108 दरवाजा है, 108 दरवाजे तो बहुत हो जाते हैं। कर्म आ रहा है तो कौन सा दरवाजा खुल गया छठे में आ गए उस समय? मन कृत है, वचन कृत है, काय कृत है, क्रोध मान माया लोभ इन चारों में से है, संभ्रम समारंभ आरंभ है। क्या किस रूप में उनकी परिणति हुई? देखो कहना बहुत आसान है, उसको उस रूप में परिणत कराना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो हमारे लिए बड़े हैं इसलिए उनके हम इस ढंग से समीक्षा न करें ये गलत बात है। उनके हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी संभावना के तौर पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर वे आहार के लिए उठते हैं तो क्या महसूस करते हैं और उठ जाते हैं? ये स्थूल विषय ले लो, उठते तो हैं, एकदम कौन उठते हैं? हाँ ये ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है कि एकदम जो है कमंड तो उनके पास रहता ही नहीं, पीछे भी संभव है नहीं रहती है। कई लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है। अब आहार के लिए उठना है, जाना है, तो जब वो उठ करके चले जाते हैं तो आहार संज्ञा तो है उनकी, आहार संज्ञा है तो वह क्रोध के साथ भी हो सकती है, मान के साथ भी हो सकती है, माया के साथ भी हो सकती है, लोभ के साथ भी हो सकती है। और दूसरा एक और भी विकल्प आता है मुझे, मान लो कि आहार के लिए निकले, एक ही अंजलि लेते हैं कि दो बार लेते हैं या तीन बार लेते हैं? नहीं सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो एक ही ग्रास लेकर बैठ जाते हैं, क्या कैसा है कहें उसको कहाँ का कहाँ पहुंच गए प्रसाद सागर जी। इन्होंने ये कहा कि मान लो तीन चार व्यक्तियों ने पड़गा लिया, हाँ मतलब एक ही ग्रास यदि ले लिया, जिसने दे दिया उन्हीं के दूसरे यदि हाथ देना चाहता तब तक तो बैठ गए, तो उनको पड़काने का क्या होगा? हमारा नंबर ही नहीं आया। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ? नहीं इससे कोई मतलब नहीं, सामान नहीं सही है, उसी थाली को टच कर आया इसलिए तो हो गया हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसी को सबके ऊपर मान लो बुरका देते हैं तो भी वो हो जाएगा प्रसाद, प्रसाद की उनको चिंता नहीं। लेकिन मान लो एक ही ग्रास ले लिया और बैठ गए और दूसरे जो पड़गाने वाले वो कहेंगे कि भाई हमने तो पड़गा तो लिया जीवन में एक बार, तीर्थंकर आए और आहार देने का ही सौभाग्य नहीं मिला, अंदर जाने को मिल गया लेकिन लिया ही नहीं गया, अंदर ले जाने का भी हो गया। ठीक है, मतलब उनका क्या होता है ये तो समझ में नहीं आता। उत्कृष्ट मान लो चारित्र को लेकर के चलते हैं तो संभव है वह उत्कृष्ट अवमोदर भी करते होंगे। छह तप है ना बाहर के, तो छह तप में तो एक अवमोदर भी होता, उत्कृष्ट उदर तो एक होता है, एक ग्रास है, क्या नहीं लिखा? हाँ वो तो इसमें कोई बात नहीं, एक ग्रास को तो एक टुकड़ा कम कर दें, नहीं एक टुकड़ा कम कर देंगे, इसमें कोई नहीं, नहीं उससे कम नहीं होना चाहिए, सीधी सीधे तो वर्धमान का अर्थ क्या होता है, हाँ एक शक्ति नहीं लेंगे उसमें क्या बात, ये सारे सारे सर्वोत्कृष्ट जितने भी प्रणाली हैं तपों की वो सब वर्धमान चरित्र वालों के साथ घटित हो जाते हैं, इसमें कोई वादा नहीं, लेकिन मतलब ये हम लोगों के लिए ऐसा विस्मय की घटनाएं हैं, कैसी चर्या उनकी होती होगी, तो इस प्रकार आहार संज्ञा यदि होती है तो वह कौन से कर्म की उदीर्णा के साथ होती है, तो घटित तो होते हैं, मतलब सूक्ष्म असंख्यात लोग प्रमाण अध्यवसान माने जाते हैं, उन सब में हम किसी भी प्रकार से विभाजन करना चाहें तो वो संभव नहीं होता, इसलिए देखो क्रोध करने वाला, मान करने वाला, माया करने वाला, लोभ करने वाला, उस तद्गत परिणति होती है क्या नहीं होती है, जो छठे गुणस्थान में तीव्रता है उस रूप में अपने आप को परिणति होती है क्या नहीं होती है, जैसे मान लो गति नाम कर्म का उदय है तो मैं मनुष्य हूं ये कैसा, इसी ढंग से संवेदन होता, ज्ञान की परिणति कर्म चेतना के माध्यम से या कर्म फल चेतना के माध्यम से इस ढंग से होती रहती है, मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं इस प्रकार हमेशा कहता रहता क्या, लेकिन होगा वो संवेदन तो होगा, अन्य गति का नहीं होगा लेकिन गति मार्गना के अनुसार उसका तो होगा, वो औदिक भाव है कौन छूटेगा उसमें, प्रमाद की भूमिका तो होगा ही, जैसे मान लो आप मुनि हैं कोई भी हर्ष विषाद नहीं करते हैं, कोई नमुस्त करता है तो आप आशीर्वाद देते हैं, अपने आप को मुनि माना है क्या नहीं है, हाथ से उठ गए ना, उसी प्रकार जिस समय आर के लिए उठे हो उस समय तो किया, उस समय क्रोध मान माया लोभ में से कोई न कोई उजीर्णा तो है, उसका संवेदन तो होगा उसको, मतलब मुझे ग्रास लेना है ये लोभ के बिना कर नहीं सकता, यूं कह दो लोभ के बिना कर नहीं सकता है? हाँ हाथ है, यूं हाथ कर दिया ये लोभ ही तो है और क्या है, नहीं नहीं बिल्कुल, देखो कर्म सिद्धांत के बारे में वो जब तक गहराई में तक सोचते नहीं तब तक उसका फल मिलता ही नहीं, अपनी समझ में नहीं आ सकता ये क्या है, ये लोभ तो है, यहां से वहां पर चले गए ये लोभ तो है, श्रावकों के घर में ही जाते हैं अन्यत्र क्यों नहीं जाते, ए सुन लो श्रावकों के घर में ही, श्रावक के घर में ही जाते हैं अन्य किसी घर में नहीं जाते हैं, ये लोग वहां पर ही अपने को मिलेगा, ये लोभ है, कह तो रहे ना निषेध है, लेकिन वहां पर जाएंगे तो मिलेगा, इस लोभ से जा रहे हैं क्या है? इसकी साझा पर ये तो बताओ, यहां से निकले इसी लोभ से निकले, हाँ अब ये बात अपनी शर्त के अनुसार चलेगा ये बात ठीक है, लेकिन इसके उपरांत भी मिले मिले मुझे ऐसे भाव भी नहीं करेंगे, लेकिन निकले हैं लेने के लिए निकले हैं, बिना लोभ के लिए तो निकल नहीं सकते, हाँ बहुत देखो उस, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, कौन से कर्म के उदीर्णा के कारण ये सब कार्य हो रहे हैं ये देखना परम अनिवार्य होता है, कर्म की उदीर्णा न हो और ये कार्य हो रहे हो ऐसा संभव ही नहीं, इस प्रकार बंद हो जाता है। जीवस्य एवं खलु सुपुटम भणितम सर्वदर्शिभिः सर्वज्ञ। इस प्रकार जीव को सर्वज्ञ के द्वारा कर्म का बंध होता है ऐसा कहा गया। किंच यावत क्रोधादि आश्रवे दो भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम स्वसंवेदन ज्ञान बलेन न जानते, किंतु जब तक यह क्रोधादि आश्रव से भिन्न शुद्धात्म स्वरूप का संवेदन ज्ञान के बल से नहीं करता है तावत कालम अज्ञानी भवति, उतने काल तक वह अज्ञानी होता है, उसके बिना चल नहीं सकता। अज्ञानी सन अज्ञान जाम कर्तृकर्म प्रवृत्ति न मुंचती, अज्ञानी हुआ नहीं तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो कर्तृकर्म प्रवृत्ति है उसका वह त्याग नहीं कर सकता। तस्मात बंधो भवति, इसलिए उसको बंध होता, और बंध जो होता है